नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Art 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डेटा माइनिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट्स टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस विद JMP प्रो गलित शमुएली पीटर सी ब्रूस मिया एल स्टीफंस और नितिन आर पटेल की अनुप्रयोग केंद्रित पाठ्य पुस्तक है। यह पुस्तक व्यावसायिक डेटा से उपयोगी पैटर्न पूर्वानुमान और निर्णय संबंधी अंतर्दृष्टि निकालने की प्रक्रिया को समझाती है। इसका मुख्य माध्यम JMP प्रो है, जो SAS इंस्टीट्यूट का सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है। पुस्तक केवल एल्गोरिदम की परिभाषाएं नहीं देती, बल्कि यह स्पष्ट करती है कि किसी व्यापारिक प्रश्न के लिए सही विश्लेषणात्मक विधि कैसे चुनी जाए, मॉडल की गुणवत्ता कैसे परखी जाए और परिणामों को निर्णय में कैसे बदला जाए। इसमें डेटा विजुअलाइजेशन, आयाम घटाना, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, वर्गीकरण वृक्ष, नाइव बेयस, न्यूरल नेटवर्क, अपलिफ्ट मॉडलिंग, एनसेम्बल और समय श्रृंखला पूर्वानुमान जैसे विषय शामिल है। अध्याय आरंभ में सारांश अभ्यास, डेटा आधारित उदाहरण और सहायक वेबसाइट के डेटा सेट इसे उन्नत स्नातक, स्नातकोत्तर तथा कार्यरत विश्लेषकों के लिए उपयोगी बनाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले व्यावसायिक समस्या को डेटा माइनिंग कार्य में बदलने की पद्धति। पुस्तक का केंद्रीय दृष्टिकोण यह है कि डेटा माइनिंग का आरंभ किसी सॉफ्टवेयर बटन या मॉडल से नहीं, बल्कि स्पष्ट व्यावसायिक प्रश्न से होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ग्राहक के खरीदने की संभावना का अनुमान लगाना, ऋण जोखिम पहचानना, मांग का पूर्वानुमान करना और ग्राहकों के अलग समूह बनाना। सतह पर समान नहीं दिखते, फिर भी इन्हें वर्गीकरण, संख्यात्मक पूर्वानुमान, क्लस्टरिंग या समय श्रृंखला जैसी विश्लेषणात्मक समस्याओं में बदला जा सकता है। पुस्तक इस अनुवाद की आवश्यकता पर बल देती है, क्योंकि गलत लक्ष्य चर या गलत सफलता माप चुनने पर तकनीकी रूप से सही मॉडल भी व्यापार के लिए बेकार हो सकता है। लेखक व्याख्या और भविष्यवाणी के अंतर को भी व्यावहारिक संदर्भ में रखते हैं। किसी चर का कारणात्मक संबंध समझना और किसी परिणाम का सटीक अनुमान लगाना अलग उद्देश्य है। इसलिए मॉडल चयन में केवल सांख्यिकी महत्व नहीं, निर्णय का उपयोग, त्रुटि की लागत और उपलब्ध डेटा की प्रकृति भी मायने रखती है। यह दृष्टि पाठक को मॉडल को अंतिम उत्तर मानने के बजाय निर्णय प्रक्रिया का एक नियंत्रित उपकरण मानना सिखाती है। दूसरा, डेटा विजुअलाइजेशन और आयाम घटाने से जटिल डेटा की प्रारंभिक समझ। डेटा माइनिंग की विश्वसनीयता काफी हद तक उस प्रारंभिक जांच पर निर्भर करती है जो मॉडलिंग से पहले की जाती है। पुस्तक डेटा विजुअलाइजेशन को केवल प्रस्तुति का माध्यम नहीं मानती, बल्कि डेटा की गुणवत्ता और संरचना पहचानने का विश्लेषणात्मक साधन मानती है। वितरण, असामान्य मान, समूह, प्रवृत्तियां और चरों के संभावित संबंध ग्राफों के जरिए जल्दी दिख सकते हैं। यह चरण इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुपस्थित मान, गलत कोडिंग, अत्यधिक तिरछे वितरण या असंगत माप मॉडल के निष्कर्षों को विकृत कर सकते हैं। आयाम घटाने की तकनीकें तब उपयोगी होती है जब बहुत सारे संबंधित चर उपलब्ध हों और सीधे विश्लेषण से शोर या जटिलता बढ़ रही हो। कम आयामी प्रतिनिधित्व डेटा की प्रमुख संरचना देखने, दृश्यांकन सरल बनाने और कुछ स्थितियों में आगे की मॉडलिंग को अधिक स्थिर बनाने में मदद कर सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि हर उपलब्ध चर को मॉडल में डाल देना बेहतर विश्लेषण नहीं है। डेटा को देखना, उसकी सीमाएं समझना और सार्थक संकेत को अनावश्यक विस्तार से अलग करना विश्वसनीय बिजनेस एनालिटिक्स की बुनियाद है। तीसरा, पूर्वानुमान और वर्गीकरण के लिए रिग्रेशन, वृक्ष और संभाव्य मॉडल। पुस्तक पर्यवेक्षित शिक्षण की उन विधियों पर विस्तृत ध्यान देती है जिनमें पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नए मामलों का अनुमान लगाया जाता है। रैखिक रिग्रेशन उपयोगी है जब लक्ष्य एक संख्यात्मक परिणाम हो, जैसे बिक्री या मांग। लॉजिस्टिक रिग्रेशन उन स्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां परिणाम श्रेणीगत हो, जैसे ग्राहक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। इन विधियों की उपयोगिता केवल अनुमान में नहीं, बल्कि चरों और परिणाम के संबंध को व्यवस्थित रूप से समझने में भी है। इसके विपरीत वर्गीकरण और रिग्रेशन वृक्ष निर्णय नियमों को शाखाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका दृश्य रूप उन व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक हो सकता है जिन्हें जटिल गणितीय समीकरणों की तुलना में नियम आधारित विभाजन सहज लगता है। पुस्तक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और नाइव बेयस जैसे वर्गीकरण विकल्प भी शामिल करती है। इससे पाठक समझता है कि एक ही समस्या के लिए कई मॉडल संभव हैं और चयन अनुमान की सटीकता, व्याख्येयता, डेटा की मान्यताओं तथा त्रुटि की वास्तविक लागत के आधार पर होना चाहिए। इस तरह मॉडलिंग को एकल तकनीक के अभ्यास के बजाय तुलनात्मक निर्णय प्रक्रिया के रूप में रखा गया है। चौथा, क्लस्टरिंग से ग्राहक और रिकॉर्ड समूहों की खोज। हर व्यावसायिक समस्या में पहले से तय परिणाम उपलब्ध नहीं होता। जब लक्ष्य चर मौजूद न हो और उद्देश्य डेटा के भीतर स्वाभाविक रूप से बनने वाले समूह पहचानना हो, तब क्लस्टर विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक क्लस्टरिंग को ऐसे रिकॉर्डों को साथ रखने की विधि के रूप में प्रस्तुत करती है जिनकी विशेषताएं अपेक्षाकृत समान हो, जबकि अलग समूहों के बीच सार्थक अंतर हो। ग्राहक विभाजन इसका परिचित उपयोग है, पर इसकी उपयोगिता केवल विपणन तक सीमित नहीं है। इसे व्यवहार, उपयोग पैटर्न, उत्पाद विशेषताओं या परिचालन प्रोफाइल के आधार पर अलग प्रकार के मामलों को समझने में लगाया जा सकता है। पुस्तक दूरी के माप और क्लस्टरों के बीच समानता के प्रश्न को जरूरी मानती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संख्यात्मक पैमाने, चर का चयन और डेटा की तैयारी बदलने पर समूहों की रचना भी बदल सकती है। इसलिए क्लस्टर को स्वतः प्राप्त अंतिम सत्य नहीं समझना चाहिए। विश्लेषक को यह जांचना होता है कि बने समूह पर्याप्त अलग हैं या नहीं, व्यापारिक दृष्टि से समझ में आते हैं या नहीं, और क्या उनके आधार पर अलग कार्रवाई संभव है। यही जांच क्लस्टरिंग को केवल गणनात्मक विभाजन से उपयोगी रणनीतिक अंतर्दृष्टि में बदलती है। अंत में एंसेम्बल, अपलिफ्ट मॉडलिंग और समय श्रृंखला में कार्रवाई योग्य पूर्वानुमान। पुस्तक उन्नत अनुप्रयोगों के माध्यम से यह दिखाती है कि अच्छा विश्लेषण केवल किसी परिणाम की संभावना बताने तक सीमित नहीं रहता। एंसेम्बल विधियां कई मॉडलों की शक्तियों को मिलाकर अनुमान की स्थिरता या सटीकता बेहतर करने का प्रयास करती है। इनका तर्क यह है कि अलग मॉडल डेटा में अलग संकेत पकड़ सकते हैं, इसलिए उनका संयोजन एक मॉडल की सीमाओं को कम कर सकता है। अपलिफ्ट मॉडलिंग इससे भी अधिक निर्णय केंद्रित विचार प्रस्तुत करती है। साधारण प्रतिक्रिया मॉडल यह अनुमान लगा सकता है कि कौन ग्राहक प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अपलिफ्ट मॉडल का उद्देश्य यह पहचानना है कि किस व्यक्ति की प्रतिक्रिया किसी हस्तक्षेप जैसे प्रचार प्रस्ताव के कारण बदलेगी। इससे उन लोगों पर खर्च करने से बचा जा सकता है जो बिना प्रस्ताव के भी खरीदते या जिन्हें प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय श्रृंखला पूर्वानुमान में समय का क्रम स्वयं सूचना का स्रोत बनता है। बिक्री, मांग या अन्य क्रमिक माप में रुझान और मौसमी बदलाव भविष्य के अनुमान को प्रभावित कर सकते हैं। इन विषयों को साथ रखने से पुस्तक का व्यावसायिक संदेश स्पष्ट होता है। विश्लेषण का मूल्य तभी है जब वह सीमित संसाधनों के लिए बेहतर, समयानुकूल और मापी जा सकने वाली कार्रवाई सुझाए। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो डेटा माइनिंग को व्यापारिक निर्णयों के संदर्भ में सीखना चाहते हैं और जेएमपी प्रो के माध्यम से मॉडलिंग का प्रत्यक्ष अभ्यास करना चाहते हैं। उन्नत स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी, बिजनेस एनालिस्ट, विपणन या वित्त पेशेवर तथा डेटा आधारित परियोजनाओं से जुड़े प्रबंधक इससे लाभ ले सकते हैं। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह डेटा की प्रारंभिक जांच से लेकर मॉडल निर्माण, तुलना और व्याख्या तक एक पूर्ण कार्यप्रवाह पर ध्यान देती है। पाठक केवल रिग्रेशन, वृक्ष या क्लस्टरिंग के नाम नहीं सीखता, बल्कि यह भी समझता है कि इनका उपयोग कब सार्थक है, परिणामों में किन सीमाओं को देखना चाहिए और किस प्रकार मॉडल को निर्णय से जोड़ा जाए। समान विषय की कई पुस्तकों में सिद्धांत या प्रोग्रामिंग पर अधिक जोर होता है। यह पुस्तक जेएमपी प्रो की इंटरैक्टिव कार्यप्रणाली, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों, अध्याय सारांशों, अभ्यासों और डेटा सेट आधारित सामग्री के कारण अलग स्थान रखती है। यह उन लोगों के लिए कम उपयुक्त हो सकती है जो केवल मुक्त स्रोत कोडिंग वातावरण में काम करना चाहते हैं, जो कि इसका अभ्यास सॉफ्टवेयर विशिष्ट है। फिर भी इसके मूल वैचारिक ढांचे जैसे लक्ष्य की स्पष्टता, मॉडल सत्यापन, व्याख्येता और कार्रवाई योग्य निष्कर्ष किसी भी आधुनिक विश्लेषणात्मक वातावरण में लागू होते हैं, इसलिए यह पाठ्यपुस्तक तकनीक और व्यावसायिक विवेक के बीच उपयोगी पुल का काम करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गलिच मुली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।